नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय नई दिल्ली में जापान की प्रधानमंत्री सनाए तकाइची के साथ वार्ता कर रहे हैं। वार्ता के बाद कुछ सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए जाने की भी संभावना है। आज सुबह प्रधानमंत्री तकाइची का राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में औपचारिक स्वागत किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। जापान की प्रधानमंत्री कल शाम 3 दिन के भारत दौरे पर नई दिल्ली पहुंची। प्रधानमंत्री तकाइची का ये भारत का पहला आधिकारिक दौरा है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये दौरा भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी को आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज जापान की प्रधानमंत्री तकाइची के साथ व्यापक विचार विमर्श से दोनों देशों की साझेदारी को और प्रगाढ़ बनाने में सहायता मिलेगी। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत और जापान हिंद प्रशांत तथा अन्य क्षेत्रों में भी शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए साझा प्रयास जारी रखेंगे। भारत ने अपने संकल्प को दोहराते हुए कहा है कि आतंकवाद को किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंडों की कड़ी आलोचना करते हुए एक मजबूत और एकजुट वैश्विक कार्रवाई का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र की वैश्विक आतंकवाद विरोधी रणनीति की 9वीं समीक्षा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने ये बात कही। श्री हरीश ने कहा कि भारत दशकों से सीमा पार आतंकवाद का शिकार होता रहा है और इसलिए मानता है कि आतंकवाद के सभी रूपों की स्पष्ट रूप से निंदा की जानी चाहिए। केंद्र सरकार ने असम में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पूरे सहयोग का आश्वासन दिया है। कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कल गुवाहाटी में राज्य सरकार के साथ समीक्षा बैठक की। श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार असम और अरुणाचल प्रदेश में बाढ़ के हालात को लेकर बेहद गंभीर है। असम के मुख्य सचिव रवि कोटा ने बताया कि बाढ़ से 13 जिलों के करीब 72,000 लोग प्रभावित हुए हैं। केंद्र सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ योजना 2026 को अधिसूचित कर दिया है। ये योजना 29 जून से प्रभावी हो गई है। नई योजना 1952 की कर्मचारी भविष्य निधि योजना का स्थान लेगी। इस योजना का उद्देश्य डिजिटल अनुपालन को मजबूत करना, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करना, खातों के स्थानांतरण को आसान बनाना और भविष्य निधि ढांचे को नए श्रम कानून के अनुरूप बनाना है। नई योजना में अनिवार्य ईपीएफ अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के वेतन का 12% बना रहेगा। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठानों पर मौजूदा 10% की दर लागू रहेगी। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ ने आईएसआई प्रायोजित अंतर्राज्य आतंकी और हथियार नेटवर्क पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी आईएसआई हैंडलर शहजाद भट्टी और उसके साथियों के निर्देश पर राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी गतिविधि को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। आज जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए 4,822 तीर्थयात्रियों के पहले जत्थे को रवाना किया। इस पवित्र यात्रा में शामिल होने के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से तीर्थयात्री जम्मू पहुंच रहे हैं। यूक्रेन के कीव में रूस के ड्रोन और मिसाइल हमले में 11 लोग मारे गए और कई लोग घायल हो गए। स्थानीय समाचार एजेंसियों ने बताया कि आज शहर के कई हिस्सों में विस्फोटों की आवाजें सुनी गईं। ये हमले इस सप्ताह की शुरुआत में यूक्रेन द्वारा मॉस्को पर किए गए ड्रोन हमलों के बाद हुए हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून आज दिल्ली के सभी इलाकों सहित गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब के ज्यादातर हिस्सों और राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ गया है। राजधानी में बारिश से गर्मी और उमस से भरे मौसम से काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन में मानसून के उत्तर भारत के कई और इलाकों में आगे बढ़ने की संभावना व्यक्त की है। फीफा विश्व कप के रोमांचक मुकाबले में बेल्जियम ने सेनेगल को अतिरिक्त समय में 3-2 से हराकर राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया है। यूरी टिलमैंस ने 125वें मिनट में पेनल्टी से गोल दागकर बेल्जियम को 3-2 की रोमांचक जीत दिलाई। राउंड ऑफ 32 के मैच में सह मेजबान अमरीका ने आज सुबह बोस्निया और हर्जेगोविना को नॉकआउट राउंड में 2-0 से हराकर अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।